अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत हम ईश्वर से संवाद शीर्षक की धारा में प्रभु श्री कृष्ण, गुरु नानक देव एवं शिरडी साई बाबा जी से मनुष्य के मध्य हुए वार्तालापों की एक झलकियां प्रस्तुत करेंगे। इनकी प्रस्तुति नाटक के रूप में राजस्थान के युवा भक्तवृंद एवं बाल विकास के बच्चों द्वारा प्रशांति निलयम में भगवान बाबा की अलौकिक उपस्थिति में 29 दिसंबर सन 2018 को की गई थी।
आओ अब द्वापर युग में ईश्वर और मनुष्य के बीच हुए संवाद पर गौर करते हैं। यह संवाद है योगेश्वर कृष्ण उनके प्रिय सखा अर्जुन एवं दुर्योधन के बीच। ध्यान पूर्वक सुनना, इसके समाप्त होने पर तुम में से प्रत्येक को बताना होगा कि तुमने उस संवाद से क्या जाना। ईश्वर के साथ हुआ हर एक संवाद संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गहन संदेश और उदाहरण होता है, जो कि पीढ़ियों तक उनका मार्ग प्रशस्त करता है।
कौरवों से जुए में मिली हार के फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास काटना पड़ा। 13 वर्ष पूर्ण होने पर पांडवों ने कौरवों से इंद्रप्रस्थ लौटाने हेतु शांति दूत कौरवों के पास भेजा, पर वो खाली हाथ लौट आया। अब युद्ध के बादल मंडराने लगे और कौरव एवं पांडव युद्ध की तैयारियों में जुट गए। वे युद्ध में अपने अपने पक्ष में भाग लेने के लिए मित्र राजाओं से संपर्क करने लगे। इस प्रक्रिया में दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारिका पहुंचे।
हे अर्जुन, तुम्हें यह देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता हुई, कब आए?
कृष्ण, मैं भी आया हूं। मैं अर्जुन से पहले आया था।
यह सही है, परंतु मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए मैंने पहले अर्जुन से बात की। दुर्योधन, तुम्हारा भी स्वागत है। तुमसे मिलकर भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूं तुम दोनों यहां क्यों आए हो। तुम दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तो शांति प्रिय व्यक्ति हूं। यदि तुम युद्ध में मेरी सहायता चाहते हो तो मैं एक बात तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा और ना ही युद्ध करूंगा। यदि आप चाहें तो मेरी सेना ले सकते हैं। यदि मेरी सेना युद्ध करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं या मेरी 7 लाख की सेना?
प्रभु, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। आप, केवल आप। चाहे आप युद्ध न भी करें तब भी मुझे केवल आप ही चाहिए प्रभु।
अच्छा हुआ कि अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया, मैं भी तो यही चाहता था।
तुम बताओ दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए?
अब ठीक है, युद्ध में आपकी 7 लाख सैनिकों की सेना को मैं ही ले लेता हूँ।
ठीक है दुर्योधन, मेरी सेना अब तुम्हारी तरफ से युद्ध में भाग लेगी।
तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। अब बताओ जतिन, द्वापर युग में हुए इंसान एवं ईश्वर के बीच संवाद से तुम क्या जाने?
यह संवाद हमें सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में विकल्प का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए।
कैसे?
यह संवाद मनुष्य के समक्ष उपस्थित 2 विकल्पों को रखता है। यदि वह चाहे तो भगवान से सांसारिक वस्तुओं को मांग ले, या स्वयं भगवान को ही मांग ले।
बहुत खूब विनायक, अब तुम बताओ कि मनुष्य इन दोनों विकल्पों में से किसे चुनता है?
मेरा ऐसा अनुभव है सर कि मनुष्य भगवान की तुलना में लगभग हमेशा सांसारिक वस्तु को ही अपनी प्राथमिकता देता है। सांसारिक वस्तुओं की कामना मनुष्य को सदा दुखों की ओर धकेलती है, परंतु दुर्योधन के युग से लेकर आज तक मनुष्य ऐसा ही करता आया है और दुख उठाता रहा है। सही मार्ग पर चलना उसने अभी तक भी नहीं सीखा है।
बहुत सुंदर विनायक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत ही सटीक और व्यापक है। अब तुम बताओ सिद्धार्थ कि क्या कुछ और भी बचा है जो इस संवाद से समझ आता हो?
महाभारत का युद्ध कोई प्राचीन इतिहास का अध्याय नहीं है। ऐसा युद्ध तो प्रत्येक मानव हृदय के अंदर अच्छी और बुरी शक्तियों में होता रहता है। जो अपने हृदय में योगेश्वर कृष्ण को सारथी के रूप में बिठाने का महत्व जानता है, उसकी विजय सुनिश्चित है। इसलिए भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लो, अपने सभी कार्य को उसे ही समर्पित कर दो, उसी के हो जाओ और स्वयं को उसी के चरणों में अर्पित कर दो, तुम्हारी हमेशा विजय होगी।
बहुत खूब सिद्धार्थ, ईश्वर से संवाद की कड़ी में एक बहुत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद संवाद है, जो कि गुरु नानक और उनके भक्त दुनी चंद के बीच का है। लाहौर में दुनी चंद नाम का एक धनी व्यक्ति गुरु नानक का परम भक्त था। वो लाहौर का एक बड़ा व्यापारी था। उसे अपनी धन संपत्ति पर बड़ा गर्व था। जब भी उसके पास 1,00,000 रुपया इकट्ठा हो जाता, वह अपने घर की छत पर एक झंडा लहरा देता। इस प्रकार धीरे धीरे दुनी चंद की छत पर कई झंडे लहरा रहे थे। एक दिन
भाई दुनी चंद, क्या तुम मेरा एक काम करोगे?
मालिक, आप हुक्म तो करें, कौन सा ऐसा काम है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता?
मैं तुम्हें एक सुई दे रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखो, और जब हम अगले जन्म में मिलेंगे तो तुम मुझे इसे वापस लौटा देना।
वाहे गुरु, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं ऐसा जरूर करूंगा। देखो भाग्यवान, महागुरु ने यह सुई मुझे सुरक्षित रखने को दी है और अगले जन्म में इसे वापस करने को कहा है।
ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस सुई को अगले जन्म में उन्हें वापस कैसे कर सकते हो? सुई को तुम अगले जन्म में साथ कैसे ले जा सकते हो?
मालिक, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है, यह कार्य मैं तो क्या किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। मैं सुई को अपने साथ अगले जन्म में कैसे ले जा सकता हूँ?
यदि तुम एक सुई को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो इन लाखों रुपयों को इकट्ठा करने का क्या लाभ? दुनी चंद, याद रखो, तुम पैसों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उसी पैसे से किसी जरूरतमंद दीन दुखी की सेवा करके जो पुण्य कमाओगे, वो जरूर तुम्हारे साथ जाएगा।
महागुरु, मैं माफी मांगता हूँ, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैंने जितना भी धन कमाया है, उसका उपयोग समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में लगाऊंगा।
देखा आप लोगों ने, ईश्वर का प्रत्येक व्यक्ति से संवाद बड़ा ही अलग एवं व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार होता है। जहां पर हजारों उपदेश काम नहीं आते, वहां पर एक सुई ने अपना काम कर दिया।
मुझे तो लगता है कि जब भी मनुष्य को ईश्वर से संवाद का अवसर मिलता है, वो मनुष्य को मिले एक वरदान से कम नहीं है। उस संवाद का सीधा फायदा उस मनुष्य को भी होता है, और उस संवाद को पढ़कर सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होती है।
बहुत खूब विनायक, वास्तव में ऐसा लगता है कि आज के सत्संग के मर्म को तुमने पूरा ही निचोड़ कर पी लिया है। चलो अब ऐसा ही एक वाक्या तुम्हें बताता हूं। एक बार एक धनी व्यक्ति शिरडी साईं बाबा के पास द्वारिका माई पहुंचा। इत्तेफाक से उसकी जेब में 40 रुपए थे।
बाबा, बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा थी, आज वो पूर्ण हुई।
कहो, कैसे आना हुआ?
भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, परिवार, संतान का सुख, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा बेचैन रहता है। मैं आपसे परम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ।
ओहो, तुम परम ज्ञान को पाना चाहते हो? बताओ, क्या कर सकते हो इस ज्ञान को पाने के लिए?
कुछ भी बाबा, आप बताएं क्या करना होगा मुझे, मैं सब कुछ करूंगा।
चलो ठीक है, अप्पा जी जाओ तो उस पंसारी से 40 रुपए ले आओ, कहना बाबा का हाथ तंग है।
बाबा, उस पंसारी ने तो मना कर दिया, कहता है तुम्हारे इस फकीर के लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा।
चल कोई बात नहीं, जा मधुसूदन सुदान के पास जा और कहना बाबा को आज 40 रुपए की जरूरत है। चल जा।
ठीक है बाबा, जाता हूँ।
बाबा बाबा, मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हैं, मेरी समस्या का समाधान कीजिए ना।
बेटा बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है?
बाबा, मैं तांगा चला चला कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कल रात से ही मेरी घोड़ी न जाने कहाँ चली गई है। आप बताइए ना कि वो कहाँ मिलेगी।
अल्लाह मालिक, तेरे गांव के बाहर तालाब किनारे रामू के खेत के पास बरगद के पेड़ के नीचे तेरी घोड़ी घास चर रही है। जा, तुझे वहीं मिलेगी तेरी घोड़ी।
ठीक है बाबा, अभी जाता हूँ।
बाबा मधुसूदन ने मना कर दिया, कहता है तेरे फक्कर बाबा के पास कुछ है रखने को गिरवी, अगर है तो ले आ और ले जा 40 रुपए। मैं तो आ गया बाबा।
चल बैठ जा तू, तुझसे नहीं होगा आज। नारायण बा, तुम जाओ उस माधो हलवाई के पास और 40 रुपए ले आओ, कहना बाबा को बहुत जरूरत है अभी।
माधो हलवाई ने तो कहा आज सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को देने के लिए मेरे पास फिजूल पैसे नहीं है।
बाबा कब से खड़ा हूं मैं, पर आपने मेरी समस्या का समाधान तो किया ही नहीं।
यही तो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे कुर्ते की दाई जेब में 40 रुपए पड़े हैं, फिर भी तुमसे नहीं निकले, जबकि तुम इतनी देर से देख रहे हो कि मुझे 40 रुपए की आवश्यकता है। ध्यान रखो, त्याग के बिना तुम कभी भी परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म त्याग के बिना तुम कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। धन संपत्ति परिवार ये सब परम ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक नहीं, इसके साथ भी तुम परम ज्ञान को पा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने मोह को त्यागना होगा।
बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आपके आशीर्वाद से मुझे आज त्याग का महत्व समझ आ गया। आज मैं धन्य हो गया बाबा, आज मैं धन्य हो गया।
देखा तुमने कितना अद्भुत और रोमांचित करने वाला है ये ईश्वर से संवाद।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। ईश्वर से संवाद के संदर्भ में आज एक नाटिका से कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए गए थे।